द्वितीय दिवस।
कल प्रवचन में महाराष्ट्र ने बताया है कि जिस वस्तु के प्रति हमें आकर्षण पैदा हो जाता है वह हमें अपनी ओर इतनी तीव्र गति से खींचती है कि जब तक हम उसे पा ना ले हमें चैन नहीं मिलता। अगर परमात्मा हृदय में उतर जाए तो साधक को तब तक चैन नहीं आता जब तक कि उसका मिलन परमात्मा से न हो जाए। घर छोड़ना संन्यास नहीं है, वेश बदलना भी संन्यास नहीं है, अलग रहना भी संन्यास नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहना ही संन्यास है। महाराष्ट्र का यही संदेश है कि हम सब सफल गृहस्थ सन्यासी बने। अब मैं महाराष्ट्र से अनुरोध करती हूँ कि चरम लक्ष्य विषय पर आज का प्रवचन प्रारंभ करें।
ओम बोधाभिषुषतैरबोधतिमिरम् हृद्व्योमगं धारयन् प्रज्ञावारिधिमुन्नतिं च गमयन् सोमः सदोदेति यः तं संसारसहस्ररश्मिजनितक् क्लेशापहं दक्षिणामूर्तिं निर्मलयोगिचिन्त्यचरणां भोजं भजे शंकरं। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमाम्य भोगी परिवार संपदं निरस्तभूति मनुमार्ध विग्रहं अनुग्रमुन् मृदित काल लांछनं विना विनायकम पूर्व शंकरं यद्वाक् सूर्यांशु संताप प्रणष्टध्वान्तकल्मषः प्रणम्यतां गुरून् वक्षे ब्रह्मविद्या विनिश्चयम् प्रणम्यतां गुरून् वक्षे ब्रह्मविद्या विनिश्चयम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मु स्वस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है वह कौन सी चीज है जिसको पाने की अभिलाषा हरेक के हृदय में है? जिसको पाने के बाद फिर और कुछ भी पाना शेष रह नहीं जाता, उसी को भगवान ने यहाँ पर ज्ञेय कहा, जानने के योग्य कहा। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मान् सत्तन्नासदुच्यते। भगवान कहते हैं ये ज्ञेयम् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको मैं प्रकर्षेण अच्छी प्रकार से समझा करके कहूंगा। वेदांत कहता है यह सब कुछ परमात्मा का ही विलास है, परमात्मा का ही विलास है, इसलिए हम लोगों की तीन स्थितियां बनती हैं, परंतु हैं सब ही परमात्म रूप। सामान्य जीव अज्ञात ब्रह्म की अवस्था में है, ब्रह्म को जानता नहीं, इसी का नाम बंधन है। बंधन कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमको बांधती है, ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते, बस इसी का नाम बंधन है। अज्ञात ब्रह्मा ये बंधन की अवस्था, ये कितना अज्ञात है, इतना अज्ञात है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इस बात को भी नहीं जानता। इस विषय में उसको सामान्य ज्ञान भी नहीं है। इस सारे जगत का कोई कारण, सब चीजों को चलाने वाला कोई उत्स है, यह भी नहीं जानता। घोर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं जानता, इतना ही नहीं, नहीं जानता इस बात को भी नहीं जानता। ठीक जिस प्रकार से भारतवर्ष के गांव में चले जाओ, किसी से पूछो अरे तुमको लैट्वियन भाषा आती है, लैट्वियन आती है, तो उसका प्रश्न होगा लैट्वियन बला क्या है, चीज क्या है। लैट्वियन भाषा नहीं जानता, इतना ही नहीं, लैट्वियन भाषा कोई चीज भी है जिसको मैं नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। इसी प्रकार से सारे जगत को चलाने वाले परमात्मा को नहीं जानता, इतना ही नहीं, उसको नहीं जानता, इस बात को भी नहीं जानता। परंतु परमात्मा का प्रेम जीव के प्रति अत्यधिक है, क्योंकि उसका स्वरूप है। अगर सर्वथा कभी न जाने तो प्रवृत्ति असंभव है। किसी चीज को किसी न किसी रूप में जानेगा, तब आगे उसके विशेष ज्ञान के लिए प्रवृत्ति होगी। इसलिए परमात्मा उसके अहं के अंदर अपने प्रकाश को हमेशा जगाए रखता है। जीव तो इस बात को नहीं जानता, कौन वह है जो मुझे चेतन कर रहा है, जो मुझे प्रकाशित कर रहा है। संसार में बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, उसके सामने 5.5-6 फुट का इंसान कोई चीज नहीं है। परंतु वह उतने बड़े पहाड़ भी इस बात को मैं रूप से अपने आप को जानते नहीं, वहां चेतन का प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार से सर्वत्र परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है इस बात को जीव नहीं जानता, परंतु मैं हूं इस बात को जानता है। इस मैं हूं के ज्ञान में परमात्मा का प्रकाश परमात्मा के प्रेम से प्रविष्ट हुआ हुआ है। कल शलभ के दृष्टांत से कहा था, पतंगे में शलभ के अंदर दीपक का प्रकाश पहले घुसता है। इसी प्रकार तुम्हारे अहम में परमात्मा का चेतन प्रकाश ज्ञान प्रकाश पहले प्रविष्ट हुआ है, तब आगे तुम्हारी जिज्ञासा हो सकती है। अन्यथा लंबा चौड़ा पहाड़ भी कभी जिज्ञासा नहीं करता, लंबा चौड़ा समुद्र भी कभी जिज्ञासा नहीं करता। हो सकता है तुम केवल 5.5-6 फुट के हो, परंतु तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा है। क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो। ये नहीं जानते कि तुम किसकी शक्ति से जान रहे हो, परंतु जानते हो। चूंकि जानते हो इसलिए जानते हो कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये दुख और सुख परमात्मा की हमको अत्यंत विलक्षण देन है। यदि दुख न होवे तो हमारे में ये जिज्ञासा नहीं बनेगी कि हमारा दुख कैसे दूर होवे। हमको कभी दुख न हो इस बात के लिए प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी। तो हमको दुखी ही बना देते। आग में रहने वाला कीड़ा आग की गर्मी को जानता है, बर्फ की ठंडक को जानता नहीं। इसलिए उसके अंदर भी आगे कोई जिज्ञासा नहीं, जैसा है वैसा है। अगर हम केवल दुख का ही अनुभव करते, हमको सुख का पता न होता, तो भी तो सुख का अन्वेषण करते नहीं, सुख को ढूंढते नहीं, सुख को खोजते नहीं। परमेश्वर की अत्यंत करुणा है, हमारे अहम के अंदर प्रवेश करके हमको चेतन बनाते हैं, हमको ज्ञान वाला बनाते हैं। ज्ञान वाला बना करके हमको सुख और दुख दोनों का ज्ञान देते हैं। जब दोनों का ज्ञान देते हैं तब यह जिज्ञासा होती है कि अरे कोई तरीका है कि हमको दुख कभी न होवे और सुख हमेशा बना रहे। प्रायः लोग कह देते हैं परमेश्वर ने दुख का निर्माण क्यों किया, यदि दुख का निर्माण न करता तो जिज्ञासा नहीं होती, यदि सुख का अनुभव ही नहीं होता तो उसके लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु अज्ञात ब्रह्म की अवस्था ऐसी है कि हम सुख दुख को तो जान रहे हैं परंतु ये सुख दुख क्यों जाना जा रहा है, इसकी वास्तविकता क्या है, इस बात की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। रात दिन हम सोचते रहते हैं ये विषय मिला तो सुख हो गया, ये विषय मिला तो दुख हो गया, जिस विषय से सुख दुख हुआ उसको प्राप्त करते रहे। अब भगवान ने बड़ी विलक्षण सृष्टि बनाई है, ऐसी विलक्षण सृष्टि बनाई है कि जिस विषय को तुम सुख का कारण समझते हो वही कालांतर में देशांतर में अवस्थांतर में दुख का कारण बन जाता है। वैपरीत्येन जिसको तुम सुख का कारण समझते हो वही देशांतर कालांतर अवस्थांतर के अंदर विपरीत फल दे देता है। इसलिए तुम तो यह निश्चय करते हो ये विषय मुझे प्राप्त होगा तो दुख होगा, प्राप्त होता है और कई बार सुख हो जाता है। एक हमारे सज्जन हैं दिल्ली के ही, आज से 30 वर्ष पूर्व उनके पोती पैदा हुई, 30 साल हो गए। पोती पैदा होने पर वो बड़े दुखी हो, अभी भी बहुत से लोग हैं लड़की पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं। हमको पता नहीं, एक दिन आए तो हमने कहा कि अरे भाई तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला था क्या हुआ, तो नीची नजर करके कहने लगे पोती हो गई। हमने कहा जिंदा है ना, क्योंकि उनको दुखी देखा ना, कह लगे हाँ महाराज। हमने कहा फिर तुम बड़े दुखी नजर आते हो। बोले महाराज लड़की होने से तो दुख हो ही जाता है, चलो जो हमको कहना था सो वो कह दिया। लेकिन परमेश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। आज से 3 साल पहले की बात है, उनको भगवान ने 4 लड़के दिए और 1 लड़की। लड़के तत्त्व स्थलों में कार्य के लिए चले गए, उनको फुर्सत नहीं है पिताजी को देखने की। लड़की का ब्याह दिल्ली में ही हो गया। हमसे कहने लगे महाराज क्या बताऊं, ये लड़की न होती तो मेरी बड़ी दुर्दशा होती, इस लड़की के कारण ही मैं बचा हुआ। हमको 30 वर्ष पुरानी बात याद आ गई। हमने कहा भाई ये लड़की हुई थी तो उस दिन तो तुमने बड़ा सिर लटकाया था, बड़े दुखी हुए थे। कुछ शर्मा के कहने लगे जीवन में अनुभव ठीक विपरीत हो गया, जिन लड़कों के उत्पन्न होने पर मैंने न जाने कितनी बड़ी पार्टियां दी, वो आज मेरे किसी काम के नहीं, और इसके लिए मुझे शर्म आई क्यों हो गई थी, यही मेरे आज बचे रहने का कारण है। ठीक इसी प्रकार से आदमी धन को कारण समझता है, परंतु वही धन आजकल का जमाना जानते ही हो, भागवत कहती है नृपाश्चौरा भविष्यन्ति संप्राप्ते तु कलौ युगे। राजा चोर डकैत, पहले शायद छिपके डकैती करते होंगे, पता नहीं, अब तो खुल के डकैती करते हैं। जब डकैती करते करने आते हैं तो अंग्रेजी में वो लिखते हैं कि हम रेड करने गए थे, रेड माने डकैती। अब उनको शर्म भी नहीं है इस बात की कि हम डकैती करने जाते हैं। जो धन अत्यंत सुख का कारण होता है, वही उस समय में दुख का कारण हो जाता है। इसी प्रकार सारी चीजें, तो परमेश्वर ने न हमको केवल दुख सुख दिया, न केवल ज्ञान रूप से हमको उन्होंने चेतन बनाया, वरन संसार के विषय ऐसे बनाए कि कभी दुख देवे और कभी सुख देवे। इसलिए कभी न कभी यह विचार जागृत हो जाता है, अरे ये दुख सुख विषय का धर्म है कि और किसी चीज का धर्म है? कौन सी चीज हमारे सुख का कारण है? जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सुख का कारण कौन, सुख का कारण वह है जो सारे जगत को प्रवर्तन करने वाला है, उस कारण को जानने के लिए तब प्रवृत्ति होती है। वह मैं कौन हूं जो कभी सुखी होता हूं कभी दुखी होता हूं, उसी चीज से सुखी होता हूं उसी चीज से दुखी होता हूं, मेरी वास्तविकता क्या है? अब अज्ञात ब्रह्म तो अभी भी अज्ञात है, लेकिन अब तुम उसको जानना चाहते हो, इसलिए वह ज्ञेय ब्रह्म हो गया। अब वह जानने के योग्य हो गया, तुम उसको जानने की प्रवृत्ति कर रहे हो, यह साधक की अवस्था है। संसार के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञात ब्रह्म जब उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, साधक बना, अब वह ज्ञेय ब्रह्म जानना चाहता है ये सारा खेल क्या है, किसने बनाया है, को हम कथमिदम जातम को वही कर्तास्य विद्यते, को हम, मेरी वास्तविकता क्या है। ये सारा सामने फैला हुआ संसार कहां से आ गया, कौन इसको ला रहा है? अनेक बार चेष्टा करने पर भी हम इन चीजों को नहीं ला पाते, और कभी बिल्कुल बिना प्रयत्न किए हुए आ जाती है। भगवान सुरेश्वराचार्य कहते हैं, वाति वायुर्यथा अकस्मात् अकस्मात् चोपशाम्यति। बैठे हुए हो, एक पत्ता नहीं हिल रहा, अकस्मात् वायु वाति, कुछ कारण पता नहीं, अकस्मात् जोर से हवा चलने लगती है, इतने जोर की हवा पेड़ गिरने लग जाए, जब भयंकर हवा चल रही है, सोच रहे हो अब क्या होगा, अकस्मात च उपशम्यति, ऐसी बंद हो जाती है कि फिर पत्ता नहीं हिल रहा। ये केवल हवा के विषय में नहीं समझना, सब चीजों के विषय में है। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं, तो कई बार ऐसा प्रसंग होता है, आश्रम में एक आदमी रसगुल्ला लाया, दूसरा रसगुल्ला लाया, तीसरा रसगुल्ला लाया, तो बड़े रसगुल्ले हो जाते हैं। कभी कई दिन तक रसगुल्ला नहीं और कुछ भी आवे, तो कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उस समय परिस्थिति हो जाती है उस रसगुल्ले का करे क्या, महात्माओं को बांटते हैं तो महात्मा भी कहते हैं ये रोज रोज कहां तक खाएं। अकस्मात च उपशाम्यति, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है तो लोग आके कहते हैं महाराज रसगुल्ला नहीं आया क्या, हमने कहा भाई अभी तो नहीं आया। इस प्रकार से संसार की हर चीज को विचार करके देखोगे तो कहां से कब आ जाए उसका ठिकाना नहीं, कब बंद हो जाए उसका ठिकाना नहीं। अब मनुष्य में जब जिज्ञासा जागृत हुई तब कौन है वो जो इस सब की व्यवस्था कर रहा है, अब वो ज्ञेय ब्रह्म साधक के लिए अवस्था है ज्ञेय ब्रह्म की, वो अपने आप को इस सारे सृष्टि के चलाने वाले को जानना चाहता है, वो वही कर्ता से विद्य थे, कौन इसको बनाने वाला है। अब जब साधना में प्रवृत्त हो गया, जिज्ञासा में लग गया, तो अनेक सोपानों के द्वारा अनेक सीढ़ियों के द्वारा जाकर के अंत में इसको ज्ञात ब्रह्म की अवस्था बनेगी। ज्ञातत्वेनोपलक्षितः, जब यह ज्ञात हो जाएगा उसी का नाम मोक्ष है। बंधन अज्ञात ब्रह्म की अवस्था, साधक ज्ञेय ब्रह्म की अवस्था, मुक्ति ज्ञात ब्रह्म की अवस्था। इसलिए बंधन हो, साधना हो, मोक्ष हो, सब कुछ परमात्म स्वरूप ही परमात्म स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। प्राणी मात्र चाहता है हमको पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो, छोटे से छोटा कीड़ा भी पूर्ण आनंद चाहता है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। छोटे बच्चे को भी तुम उसके हाथ को पकड़ करके जरा रखने की चेष्टा करो तो देखो कितने जोर से टांग मारता है। कीड़े को भी तुम परतंत्र बनाना चाहो, कीड़े को भी तुम दबा के रखो तो देखो कैसा छटपटाता है। प्राणी मात्र चाहता है पूर्ण आनंद को, पूर्ण स्वतंत्रता को, चाहता है पूर्ण ज्ञान को। कोई भी चीज उसको पता लग जाए कि ये जानी जा सकती है और मैं नहीं जान रहा तो इसको सहन नहीं होता। दो आदमी बात कर रहे हो, तीसरा आवे वो दोनों चुप हो जाए तो कहता है क्या बात कर रहे थे, उससे कहते हैं अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, कुछ हो रही थी। तो अंदर ही अंदर कैसा छटपटाता है, क्या बात हो रही थी, उससे कह रहे हैं तुम्हारे मतलब की नहीं है। तो प्राणी मात्र चाहता है पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति हो, किसी भी परिस्थिति में किसी भी भय की परिस्थिति को चाहता नहीं। एक बार भगवान वेदव्यास और नारद जी घूमते हुए कहीं जा रहे थे, अकस्मात उन्होंने एक मकोड़े को देखा, बड़ा चींटा होता है, बड़े जोर से भाग रहा था। देवर्षि नारद पशुओं की, पक्षियों की, कीड़ों की भाषा भी जानते हैं। उन्होंने उस कीड़े से कहा, अरे तू इतने जोर से भाग क्यों रहा है? कीड़ा कहता है, दो मिनट रुक जाओ, अभी बतलाता हूं। भाग करके पहले कोने में चला गया। कोने में जाकर के अपने जो सामने के दो उसके पैर होते हैं प्रोबोसिस, उनको ऊंचा करके कहता है, अब बोलो क्या बात है? नारद जी ने कहा, अरे तो क्यों भाग रहा था? कहने लगा, जी आप लोग जो हैं वो कान आपके कुछ काम नहीं करते हैं। एक रथ आ रहा है, मुझे उसकी घरघराहट सुनाई दे रही है। वो आ जाता, मेरे पर चढ़ जाता तो मेरा क्या हाल होता, इसलिए बच के पहले कोने में आ गया। कभी आप प्रयत्न करो किसी मक्खी को मारने का, तो आपको पता लग जाएगा, आप जितनी सावधानी से उसके पीछे से बगल से जाओगे, उसको पता लग जाएगा, खट उड़ जाएगी। क्योंकि हम लोगों के जैसे दो शीशे होते हैं, वैसे मक्खी के आंख में 6 शीशे होते हैं, इसलिए सारे कोनों से उसको दिखाई देता है। हम लोगों को पीछे की चीज नहीं दिखाई देती। कभी भी प्रयोग करके देख लो, मक्खी को तुम सोचो कि मैं पीछे से पकड़ने जा रहा हूं, नहीं पकड़ पाओगे, तुम पीछे से जाओगे वो उड़ जाएगी। उन लोगों की इंद्रियों की शक्तियां उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उसी प्रकार की बनाई है। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे तेरी बड़ी निकृष्ट योनि है, कीट योनि है, कीड़ा है, मरी जाता तो क्या हो जाता, इसमें रह के कौन सा फायदा है? कीड़ा कहता है, नारद जी जैसे आपको अपना जीवन प्रिय है, जैसे आप निर्भय रहना चाहते हैं, वैसे ही मुझे भी अपना जीवन प्रिय है, मैं निर्भय रहना चाहता हूं। कोने में आ गया, आप मुझे कोई डर नहीं है। तो प्राणी मात्र पूर्ण निर्भयता चाहता है पूर्ण आनंद, चाहता है पूर्ण स्वतंत्रता, चाहता है पूर्ण ज्ञान, चाहता है पूर्ण निर्भयता, परंतु करता क्या है? प्रेम करता है अपूर्ण आनंद से, प्रेम करता है अपूर्ण स्वतंत्रता से, प्रेम करता है अपूर्ण ज्ञान से, प्रेम करता है अपूर्ण निर्भयता से, चाहता पूर्ण को है। चाहना माने प्रेम करना। चाहता पूर्ण को है, परंतु सारा अपना प्रेम उड़ेल देता है अपूर्णों के ऊपर। अब अपूर्ण से मिलना क्या है? अपूर्ण से अपूर्ण ही मिलेगा, इसलिए कभी इसको तृप्ति होती नहीं। पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निर्भय रूप केवल वह परब्रह्म परमात्मा है। याज्ञवल्क्य जब जनक को उपदेश देते हैं, उपदेश देने के बाद जनक को वह प्रमाण पत्र देते, तूने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। प्रमाण पत्र में लिखते क्या है? अभयम वैजनक प्राप्तोसी, तू अभय पद को प्राप्त हो गया, तेरे लिए अब भय नाम की चीज नहीं रह गई। ये है पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति, किसी भी परिस्थिति में भय हो नहीं सकता। हम भय से बचने का प्रयत्न करते हैं, अपूर्ण भय की चीजों को, भय देने वाली चीजों को इकट्ठा करके। हम समझते हैं पदार्थ हमारे पास होंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे। कभी सोचने का प्रयत्न किया कि भय होता ही किससे है? तो पदार्थों से ही होता है। बाबा जी कमंडलू लेकर के बीकानेर से आकर के काशी जाने के लिए दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी बदलते हैं। वो गाड़ी सवेरे आ गई, शाम को गाड़ी जाने वाली है। बाबा जी कमंडलू को सिर के नीचे रखते हैं, वहीं पर लेट करके आनंद से खुर्राटे भरते हैं। उनको कोई भय नहीं है। अब कुछ भक्त इकट्ठे हो गए और बाबा जी से कह दिया, महाराज कुछ दिन दिल्ली में रह जाओ। महात्मा ने सोचा चलो काशी, अभी शिवरात्रि दूर है, रह जाए थोड़ी देर, ये लोग भक्त कह रहे हैं, तो रह गए। अब कोई कपड़ा ले आया, कोई बर्तन ले आया, महाराज ले लीजिए, आश्रम के काम आएगा, काशी आप जा रहे हैं। अब बाबा जी का ट्रंक भर गया। अब जब ट्रंक भर गया तब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो कुली के साथ दौड़ रहे हैं, कहीं माल लेके भाग न जाए। क्या कारण हो गया? पदार्थ होने से निर्भयता आएगी कि पदार्थों के नहीं होने से निर्भयता आएगी? इस बात को जो समझ लेगा वो कहेगा भय के निमित्त हमारा शरीर है, हमारी वासनाएं हैं, हमारी चाहनाएं हैं, इन सबको झकझोर करके मैं हटा दूंगा तो निर्भय हो जाऊंगा। निर्भयता विलक्षण चीज है। समझ बूझ करके वैराग्य, जबरदस्ती के वैराग्य से भी निर्भयता आ जाती है। स्टालिन के जमाने में रूस में एक बहुत बड़ा अणुशास्त्र का वैज्ञानिक था। स्टालिन ने सोचा अन्वेषण तो इससे कराना है, परंतु क्या पता ये इधर उधर खबर दे देवे, तो उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में ही उसको प्रयोगशाला वगैरह सब बना दी, जिसमें उसको किसी से कोई संपर्क न रहे। अब वो वहीं पर जेल में अपना प्रयोग करता था, लेकिन जेलर तो जेली के ढंग से ही रखेगा, इसलिए न खाने की चीज ढंग की मिलती है, न पहनने की चीज ढंग की मिलती है, फिर भी प्रयोग कर रहा है। अब उस समय अमेरिका के साथ प्रतियोगिता हो रही थी, तो बार बार स्टालिन का टेलीफोन जाए, दूरभाष जाए कि उससे कहो जरा जल्दी बनावे, जल्दी बनावे, जल्दी बनावे हाइड्रोजन बॉम्ब। अमेरिका बना चुका था, तो वो जेलर जा जा करके उसको बार बार कहे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अंत में एक बार मॉस्को से खबर आ गई, अगले दो महीने में ये काम जरूर हो जाना चाहिए। जेलर ने जाके कहा, यदि दो महीने में तुमने ये काम नहीं किया तो तुमको मैं ठीक कर दूंगा। जेलर जेलर ही रहा। तो वैज्ञानिक ने अपनी जीवनी लिखी है, छप चुकी है। वो बड़े जोर से अट्टहास करके हंसा और कहा कि बेवकूफी की बात मत करो, जेलर से कह रहा है। जेलर ने उससे कहा, क्यों, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। बोले, क्या ठीक करोगे? कोट मेरा फटा हुआ है इस सर्दी के अंदर, रात में सोने के लिए मेरे पास दो कंबल नहीं है, खाने के लिए तुम मुझको एक रोटी का टुकड़ा और वो विदेश है कुछ मांस का शोरबा देते हो, इससे कम दोगे तो मैं मर जाऊंगा। और तुम्हारे देश के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को कर सके, तुम मेरे को क्या ठीक करोगे? जो ठीक करना था वो तो तुमने कर दिया, मेरे पास है ही, अब क्या? इससे तुम घटाओगे तो मैं चला जाऊंगा, तो तुम्हारे ऊपर मॉस्को से और ज्यादा दंड आएंगे, ठीक तो तुम हो जाएगा, मैं क्या होऊंगा? तो वो वहां लिखता है, किसी को भय दिखाने के लिए उसके पास कोई पदार्थ होना चाहिए। If you want to rule someone, you must make him possessor of things. इस बात को हमारे ऋषियों ने समझा। क्यों उन्होंने हमारे आदर्श के अंदर सन्यासी के लिए सर्वस्व त्याग की बात कही? क्योंकि यदि उसके पास कुछ होगा तो वो होने का भय उसको सत्य नहीं बोलने देगा, वो सत्य को दबाएगा। जब उसको कुछ चाहिए नहीं, जब उसके पास कुछ है नहीं, तो उसको समाज का बड़े से बड़ा राजा कुछ नहीं कर सकता। हम समझते हैं पदार्थों से निर्भय होंगे, पदार्थ ही तो हमको सभय बनाते हैं। इसी प्रकार हम समझते हैं हम पदार्थों से स्वतंत्र होंगे, पदार्थ ही तो हमको परतंत्र बनाते हैं। जितनी हमारे पास चीजें होंगी उतने ही न हम परतंत्र होंगे। इसी प्रकार जितने पदार्थ होंगे उतने ही हम दुखी होंगे। पदार्थों से सुख नहीं होने वाला, उल्टा वो हमको दुखी करेंगे। परीक्षा में गए हैं, 10 सवाल आ गए और ऊपर लिख दिया इसमें से 5 सवाल करिएगा, अब परेशानी होती है। 2 बार 3 बार बांच बांच के निर्णय करना पड़ता है, कौन सा प्रश्न मुझे अच्छी तरह से आता है जिसको लिखूं। तुम्हारे हाथ में चुनाव है, इसलिए चॉइस है। अगर 5 सवाल हैं और 5 को करना है तो कोई मुसीबत नहीं, पहले सवाल से लिखना शुरू कर दो, 5ों को करना है। तुम्हारे पास भगवान ने बड़ा अच्छा किया, केवल 2 धोतियां दी, 1 धोती धो करके तुमने सुखा दी, दूसरी धोती पहने हुए हो, वो सूख जाएगी, जब फिर स्नान करोगे तो वो तुम्हारे पहनने में आ जाएगी, ये सूखने में चली जाएगी, कोई झंझट नहीं है। और कहीं भगवान ने तुमको दुखी बना रखा है, तुम्हारे पास 50 साड़ियां हैं, तुमको पार्टी में जाना है, तो आधी घंटा तक ऊपर से नीचे तक इसको पहनू, इसको पहनू, इसको पहनू, ये पहन करके मैं वहां गई थी, ये पहन के मैं वहां गई थी, ये डुप्लीकेट ना बन जाए, ये सारी परेशानी, ये सारी दुख कब हुआ? जब भगवान ने तुमको 50 साड़ियां दे दी, दो होती तो कोई मुश्किल नहीं था, तुरंत वो दूसरी धोती पहरी और चल दिया। ठीक इसी प्रकार तुम समझते हो हमारे ज्ञान, छोटी छोटी चीजों को जान करके हमको ज्ञान हो जाएगा। सारा का सारा वैज्ञानिक प्रवाह यही मान करके चलता है कि छोटी से छोटी चीजों को जानेंगे तो हमारा ज्ञान विकसित हो जाएगा, ज्ञान हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए किसी बुद्धिमान वैज्ञानिक ने लिखा है, वी नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। आज किसी चिकित्सक के पास जाइए, कहिए मेरे घुटने में दर्द है, वो कहता है जी मैं तो हृदय का जानकार हूं, कार्डियोलॉजिस्ट हूं, घुटने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आगे घुटने के अंदर भी, अभी हमारे वहां आबू में एक ऑर्थोपीडिस्ट की बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 350 ऑर्थोपीडिस्ट हड्डी के विशेषज्ञ जगह जगह से आए थे। एक बच्चा था, उसको कोई तकलीफ थी, हमने कहा भाई वहां जाकर के देखो तो सही, हड्डी की तकलीफ थी। तो हड्डी की तकलीफ सारी हड्डी के विशेषज्ञ नहीं जानते, उसका एक अलग विभाग है रूमेटोलॉजिस्ट, वो खाली हड्डी के रूमेटिज्म के रोग का विशेषज्ञ होता। तो कहने लगे कि ये तो रूमेटोलॉजिस्ट का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। अब विचार करो, मनुष्य के शरीर के एक एक अंगों के ज्ञान भी जब पूर्ण नहीं है तो कभी पूर्ण ज्ञान होना? इसलिए ये ज्ञान तो वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति ने विचार किया मुझे नगाड़ा चाहिए। नगाड़ा जानते हो ना, बड़ा भारी मंदिर में होता है ढोल की तरह बजाने का। अब चमड़ा बड़ा महंगा हो गया है तो चमड़ा कहां से लाऊं? तो उसने विचार किया, आजकल बरसात की मौसम में मेढक बहुत मिलते हैं, 200-400 मेढकों को मार करके सी दूंगा तो नगाड़ा बन जाएगा। तो क्या मेढकों के चमड़ों को सी करके कभी नगाड़ा बनेगा? उसके लिए तो एक ही चाहिएगा, एक भैंसे का चमड़ा होगा तब काम होगा। ठीक इसी प्रकार छोटे छोटे ज्ञान मिलकर के कभी पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकते। ये तो जब एक ही अखंड पूर्ण वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो जो कल कह रहे थे जो कुछ जानना है सब जान लोगे। इन छोटे छोटे अपूर्ण ज्ञानों को एकत्रित करके कभी पूर्ण ज्ञान होने वाला है नहीं। तो यद्यपि हम चाहते हैं पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्वातंत्र्य, पूर्ण निर्भयता, परंतु हम अपने प्रेम को उड़ेलते रहते हैं अपूर्णों के ऊपर, इसलिए हमारी कभी तृप्ति हो नहीं पाती। अब ये सारी पूर्णताएं कहां रहती हैं? तो ये सारी पूर्णताओं की अंतिम परिधि वह परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध। परमेश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है, ज्ञान उसका पूर्ण, आनंद उसका पूर्ण, तृप्ति अनादि बोध है, ज्ञान उसका पूर्ण। उससे दूसरा कोई है नहीं जिससे उसको भय होवे, इसलिए वहीं पर पूर्ण निर्भयता है। और आगे उसको रोकने वाला, उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता है। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञेय ब्रह्म है जिससे तुम जो चाह रहे हो वो पूरी तरह से तुमको मिलेगा, वो प्रवक्ष्यामि, उसको मैं बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले तो बतलाया था ज्ञान। आचार्य शंकर एक प्रश्न उठाते हैं, गई साल जिन्होंने प्रवचन सुना होगा उनको याद होगा, ज्ञान साधना के अंग बतलाए थे, मान न करो, दंभ न करो, हिंसा न करो, क्रोध न करो, कुटिलता न करो, यही सब साधन बतलाए थे। उन सब साधनों को आचार्य शंकर दो शब्दों के अंतर्गत कर देते हैं, ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयः, जितने कहे वो सारे के सारे यम और नियम या कोई शरीर को नियंत्रण करने की चीजें हैं, व्यवहार को नियंत्रण करने की चीजें हैं, अथवा मन को नियंत्रण करने की चीजें हैं, मनस्साध्या यमास्मृताः, और शरीर से जिनको साध्य किया जाए वो नियम है। तो इसलिए आचार्य शंकर उन सबको इकट्ठा करके कह देते हैं, ननु यमा नियमाश्च मानित्वादयो न तैर गेयम ज्ञायते, उनसे ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान तो प्रमाणों से हुआ करता है। तो अमानित्वादी इन सबको ज्ञान क्यों कहा गया है, तो ये स्वतः किसी ज्ञान को उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं है, परंतु इनके बिना सूक्ष्म ज्ञान उत्पन्न होता नहीं, इसलिए इनको ज्ञान कहा गया। अन्यथा तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, भगवान को बोलने की क्या जरूरत है। यदि उन साधनों से ज्ञान ही हो गया हो तो ज्ञान तो हमेशा ये का ही होगा, तो ये तुमने जान ही लिया। उनके बिना ज्ञान होता नहीं, बस इतने मात्र से वो ज्ञान साधना कहे जाते हैं। ज्ञान तो उन सब साधनों के होने पर ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि, शब्द के द्वारा भगवान जो कहने जा रहे हैं उसके द्वारा ही ज्ञान होता है, शब्दादेवा परोक्षधीहि। इसलिए भगवान उन ज्ञान साधनों को बतलाने के बाद कहते हैं, इस तैयारी के बाद अब ये ज्ञेय की तरफ तुम्हारा चित्त एकाग्र हो सकेगा, तुम उसमें लग सकोगे, अन्यथा तुम लग ही नहीं सकते। तो अब मैं प्रवक्ष्यामि भली प्रकार से क्यों कहने जा रहा हूं, क्योंकि अब उन साधनों के बाद तुम तैयार हो गए हो उसको समझने के लिए। अब ज्ञान की एक विलक्षणता भगवान बतलाते हैं, यज्ञात्वामृतमश्नुते, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय ये चीज और कहीं नहीं है। बाकी सब चीजों में जानने के बाद तुमको कुछ करना पड़ता है तब फल होता है। तुमने जान लिया मलेरिया ठीक होने के लिए कुनैन खाना है, मलेरिया चला जाएगा। ये ज्ञान तो इसलिए है कि तुम अब कुनैन खाने का काम करो। जितने ज्ञान हैं सब ज्ञान होने के बाद तुमको कुछ न कुछ हे उपादेय प्रवृत्ति निवृत्ति करने पर ही कुछ मिलेगा। ज्ञान फल उत्पन्न करता है किसी न किसी बीच में होने वाली क्रियाओं से व्यापार से। ज्ञान होके कुछ करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य परमात्म ज्ञान के विषय में भी ये समझता है कि इसको समझ के फिर कुछ करेंगे तब फल मिलेगा। भगवान कहते हैं परमात्मा विलक्षण है, वो तो करुणामय है। वो कहता है मेरे पास आ गया फिर किसी को कुछ करना पड़े। मैं किसी अरबपति के घर पैदा हो गया, अब उसके बाद मैं घास काटूं तो मुझे खाने को मिले, तो घास काट के खाने को मिलने के लिए तो मैं कल्लू चमार के घर ही पैदा हो जाता। जब मैं अरबपति के घर चला गया तो मुझे अब खाने के लिए घास काटनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जब मैं परमात्मा की गोद में पहुंच गया, उनके सामने आ गया, उनको मैंने देख लिया, फिर कुछ करके मिलेगा। यज्ञात्वामृतमश्नुते, जैसे ही उस परमात्मा को जानते हो वैसे ही अमृत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के वाक्य से ही ज्ञेय का पता लगेगा, और जैसे ही ज्ञेय का तुमको साक्षात्कार होगा वैसे ही तुमको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण निर्भयता तुमको प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान के बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। यदि ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, उनके सामने पहुंच जाओ बस। आज तक हम भिखमंगों से भीख मांगते रहे, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं मंगता ऊपर मंगता मांगे उसकी अक्कल गुम। जो सामने मंगता है वो हमको क्या देगा। दक्षिण भारत में एक बड़े अच्छे प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं रमण महर्षि। वहां एक मातृभूतेश्वर भगवान शंकर का मंदिर बनाने का विचार हुआ, तो बैठे हुए थे और जैसा होता है लोग सब बैठे हुए थे और लिस्ट बना रहे थे, बंबई में अपना वो भक्त है उससे इतना मिल जाएगा, कलकत्ते में है उससे इतना मिल जाएगा, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, वो लोग कुछ करवा देंगे, तो लिस्ट बन रही थी। महर्षि को देख के लोगों को लगने लगा कि इनको इसमें रुचि नहीं हो रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा। तो स्वाभाविक सोचा कि इनका कुछ और प्लान होगा, तो उनसे कहने लगे भगवान इसमें कोई बात गलत हो तो बतला दीजिए, हम लोग ठीक कर देंगे। वो जरा चुप ज्यादा रहा करते थे, तो पहले तो उन्होंने कहा जो मर्जी सो करो, लेकिन इतनी वितृष्णा से कहा कि सबके छाती पर बड़े जोर का मानो पत्थर पड़ गया। स्पष्ट हो गया कि इनकी रुचि के विरुद्ध काम हो रहा है। तो फिर कहा नहीं 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 महाराज, हम लोगों से जो भी गलती हो सो बतलाइए। तब उन्होंने कहा जितने सेठों के तुमने नाम लिखे हैं वो तो यहां आकर के नाक रगड़ते हैं कि मुझे मिले, और तुम उनके पास मांगने जा रहे हो। तुम सोचते हो वो देंगे, वो तो खुद ही मांगने वाले हैं, उनसे क्या मांगने जाना है। और फिर तुम हमसे पूछते हो क्या करें। ओ मात्र भूतेश्वर मंदिर भी बन गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? उसका कारण ही ये है कि सारी शक्तियों का केंद्र जो परमात्मा, उसको छोड़ के हम सोचते हैं कहां से मिलेगा। तो हम अब तक मंगतों से मांगते रहे हैं। यहां मंगतों का मतलब केवल आदमी नहीं समझ लेना, सभी अपूर्ण। रसगुल्ले से स्वाद को मांगते हैं, कपड़े से गर्मी को मांगते हैं, खाली लोगों की बात नहीं समझना। वो कपड़ा गर्मी कहां से ला रहा है, वो रसगुल्ला अपनी मिठास को कहां से प्राप्त कर रहा है। जहां से प्राप्त कर रहा है वो न पूर्ण है। तो अब तक चूंकि हम निरंतर अपूर्णों के सामने पल्ला पसारते रहे हैं, इसलिए हमेशा अतृप्ति रही है। जब उस पूर्ण आनंद स्वरूप के सामने चले जाएंगे, उसके पास पहुंच गए, और फिर भी यदि हम खाली रह गए, कुछ और करके हमको मिले, तो फिर उस पूर्ण के पास जाना भी बेकार हो जाएगा। उसके सामने पहुंच गए, बस सारा काम हो गया। अमृतत्वम अश्नुते, उसके सामने ज्ञात्वा अपरोक्ष साक्षात्कार करते ही सारी पूर्णताएं प्राप्त हो गईं। अश्नुते व्याप्नोति, प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? तो व्यापक भाव से प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान भगवान कहते हैं मैं बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा केवल जानने से ही काम हो जाता है, वह ज्ञेय है। अब उस ज्ञेय का स्वरूप क्या है उसको फिर आगे विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारुक्षो यरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।